at Southern Company, we know the right solutions start with the right questions. How do we deliver reliable energy and overcome unpredictable challenges? How do we get to net zero carbon emissions and ensure communities thrive? How do we deliver affordable energy today and tomorrow? Southern Company, building the future of energy.
Hey there, you're listening to The Quint.
आलिया भट्ट और रणबीर की फाइनली शादी हो गई है भाई। फोटोज भी देखी हैं। पूरे हफ्ते वर्चुअली शादी अटेंड भी कर लिए न्यूज देखते देखते, तो अब हफ्ते के एंड में आकर थक गई हूँ बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे घर की शादियां करवाते करवाते और काम निपटाते निपटाते बिल्कुल वैसी ही एग्जॉस्टन हो रही है। और रोजा रख के वेडिंग अटेंड करना ना आसान काम नहीं होता है। इतना इन्वॉल्वमेंट विक्की कैटरीना की शादी में भी फील नहीं हुआ था। लेकिन एक बात है, हाई प्रोफाइल शादी हो या गली में पड़ोसी की शादी हो या अपने घर में किसी की शादी हो, शादी के नाम से कान खड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। बट आई फील इट हैज एन एक्सप्लेनेशन। शादी जो लव्स है ना, वो जिस रूट वर्ड से बना है, वो एक पर्शियन वर्ड है। वो शादी का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस। तो आज उर्दूनामा में देखेंगे कि शाद होने का क्या मतलब होता है और शादी किसे कहते हैं। द क्विंट पर आप सुन रहे हैं उर्दू नामा, मैं हूँ फबीहा सैयद। शादी होती तो एक सेरेमनी है, लेकिन इसके जो लफ्जी मायने हैं वो हैं खुशी, चीयरफुलनेस, जॉय, हैप्पीनेस। लेकिन पॉडकास्ट में आपको खुश होने के हवाले से यानी शाद और नाशाद यानी अनहैप्पी होने के हवाले से अशार सुनाएंगे। शुरुआत करती हूँ हफीज जलंधरी की नज्म बसंती तराना से। बसंत यानी स्प्रिंग, और ये नज्म का छोटा सा हिस्सा सुना रही हूँ, लेकिन इसे सुन के आपको पूरा मंजर ऐसा लगेगा कि शायर ने पूरी तस्वीर पेंट कर डाली है सेलिब्रेशंस की, फेस्टिविटीज की, शादमानी की, जो बसंत के आते ही फील होती है। जलंधरी लिखते हैं, फूली हुई है सरसों, भूली हुई है सरसों, नहीं कुछ भी याद, यूं ही बामुराद, यूं ही शाद शाद, गोया रहेगी बरसों, भूली हुई है सरसों, फूली हुई है सरसों। हफीज जलंधरी का बसंती तराना का ये छोटा सा हिस्सा मैंने भी आपको सुनाया है। लेकिन जलंधरी जो हैं, जो शायर हैं, उनके बारे में बता दूं कि इन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना भी लिखा था, बाय द वे। है एक अंग्रेजी की कहावत है, अंग्रेजी में किसी ने कहा होगा कभी कि हैप्पीनेस इज अ डायरेक्शन नॉट अ प्लेस। तो इसमें मैं ना दो चीजें और जोड़ना चाहती हूँ। हैप्पीनेस इज ऑल्सो नॉट इवन अ पर्सन और अ थिंग, इट इज ओनली अ डायरेक्शन। यहां तक समझ आता है, ठीक है। बट हम खुशी को इंसानों में, जगहों में और चीजों में ही तलाश करते हैं। काफी हद तक मिल भी जाती है खुशी, लेकिन जब हम खुशी की परिभाषा इन्हीं तीनों में ढूंढते रहते हैं ना, तो वो आफ्टर अ पॉइंट गलत चीज हो जाती है। बट हैंग ऑन, मैं यहां पे खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट करने वाली हूं इस एकदम से जो थॉट आया उसकी वजह से कि एक बात बताइए आप कि हम कोई साधु या संत नहीं है ना कि जो जंगल में जाकर संन्यास ले चुके हैं। नहीं है ना, इंसान है तो इंसान को खुशी चीजों से, लोगों से और जगहों से ही तो मिलती है ना। मिसाल के तौर पे परसों सालगिरह थी मेरी, 36 की हो गई हूँ मैं। तो एक तरफ दिल सहम ही जाता है कि अब खुदा ना खास्ता बीमारियां पीछा ना ले लें, यहाँ दर्द वहां दर्द, ऐसी कंप्लेंट्स ना करने लगूं मैं। लेकिन दूसरी तरफ शुक्र भी बना रही थी कि चलो खैर है, 36वां बर्थडे देखने को तो नसीब हुआ ना। तो इस पूरी ओवर थिंकिंग के जाल में ऐसा फंस के मैंने अपनी सालगिरह का दिन बिताया कि इस तरह के अनप्लेजेंट थॉट्स आए जा रहे थे कि यूथ इज ऑफिशियली ओवर, अब तो बुढ़ापे की तरफ पैर बढ़ चुके हैं बेटा तेरे। बड़ा ही अकेलापन महसूस हो रहा था, घबराहट हो रही थी। अब इस कदर की नेगेटिविटी की खाई में आप जब गिरते जाएंगे तो कुछ तो होना चाहिए ना आपके आसपास जो आपको डूबने से और उसमें धंसते रहने से बचा सके। अब ऐसे में इंसान क्या करता है, किसी को कॉल करता है, बाहर निकल के कहीं जाता है, कोई पसंदीदा चीज अपनी निकाल के बैठता है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मेरे साथ इस तरह का कुछ होता है तो मैं अपनी बहन को कॉल करती हूँ। उसको कॉल करना चाह रही थी बट आई डिड नॉट कॉल हर बिकॉज शी वाज हैविंग हर यू नो ऑफिस कॉल्स, उसका दफ्तर चल रहा था, शी वाज सुपर बिजी। अपनी अम्मा से कॉल करना चाह रही थी पर उनको भी कॉल नहीं किया बिकॉज शी वाज फीलिंग अ लिटिल अनइजी। एस्थमेटिक है और फिर कमजोर भी है, तो इतनी हैवी ड्यूटी बात में उन्हें मतलब आज के दिन नहीं बताना चाह रही थी कि इस तरह के मनहूस ख्याल मेरे दिल में आ रहे हैं। अब अपने भाई अपने हस्बैंड से मैं इस तरह की मिडल ऑफ द डे एजिंग और रिट्रीटिंग यूथ जैसी फिलोसॉफिकल रैंट्स नहीं कर सकती, वो तो छुट्टे ही मजाक उड़ाएंगे दोनों मेरा। तो मेरी हैप्पीनेस उस रोज अपनी बर्थडे के दिन दो लोगों पर निर्भर करती थी, सिस्टर एंड माय मदर। दोनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं था, तो हम इंसानों को खुशी के लिए, थोड़े सुकून के लिए, राहत के लिए दूसरे इंसानों की ही जरूरत पड़ती है, जगहों की जरूरत पड़ती है, चीजों से भी बहल जाते हैं। सो ये कहना कि हैप्पीनेस इज नॉट अ पर्सन और अ प्लेस और अ थिंग, आई थिंक इट इज नॉट फेयर। और रही बात बर्थडे पर ओवर थिंकिंग की, तो मैंने खुद को यही दिलासा दिया कि भाई एजिज्म के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। मुझे इस पॉपुलर कल्चर ने ना दिमाग खराब करके रख दिया कि भाई 20s इज द ओनली टाइम फॉर यू। तक आई एम 36 एंड आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। दिस थॉट केप्ट मी गोइंग रियली। तो देखा आपने, हैप्पीनेस इज डेफिनेटली अ डायरेक्शन व्हिच इज एनेबल्ड बाय पीपल प्लेसेस थिंग्स एंड थॉट्स, सो चूज देम वाइजली। लेकिन जब हम शाद नहीं रह पाते हैं, जब कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती है, तब फैज अहमद फैज की ये नज्म जिसका नाम है सोच, ये एक बार पढ़िएगा जरूर। फैज तो आपको पता है ना कि कौन है, फैज अहमद फैज पोएट द जर्नलिस्ट, और ये आर्मी में भी अफसर थे, और अपनी पॉलिटिकल इनकलाबी और रेजिस्टेंस पोएट्री की वजह से एस्टैब्लिशमेंट से अमूमन आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे। और इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट आई थिंक हर सोचने समझने वाले इंटेलेक्चुअल के साथ होता ही होता है। तो अपने महबूब की मोहब्बत में गर्क होकर लोग शायर बनते हैं, लेकिन फैज अहमद फैज वो शायर हैं जो समाज में बराबरी, जस्टिस और प्रोग्रेस जैसी चीजों के ख्यालों की मोहब्बत में शायर बन गए। इनकी सोच वाकई समझने लायक है। वक्त निकाल के फैज के बारे में ना पढ़ना जरूर चाहिए हम सबको। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू फैज अहमद फैज की नज्म सोच, ये आपके लिए पढ़ देती हूँ। क्यों मेरा दिल शाद नहीं है, क्यों खामोश रहा करता हूँ, छोड़ो मेरी राम कहानी, मैं जैसा भी हूँ अच्छा हूँ। मेरा दिल गमगी है तो क्या, गमगी ये दुनिया है सारी, ये दुख तेरा है ना मेरा, हम सब की जागीर है प्यारी। तू गर मेरी भी हो जाए, दुनिया के गम यूं ही रहेंगे, पाप के फंदे जुल्म के बंधन अपने कहे से कट ना सकेंगे। गम हर हालत में मोहलिक है, मोहलिक यानी आपको नुकसान पहुंचाने वाला, घातक। गम हर हालत में मोहलिक है, अपना हो या और किसी का, रोना धोना जी को जलाना, यूं भी हमारा यूं भी हमारा। क्यों ना जहां का गम अपना लें, बाद में सब तदबीरें सोचें, बाद में सुख के सपने देखें, सपनों की ताबीरें सोचें। बेफिक्रे धन दौलत वाले ये आखिर क्यों खुश रहते हैं, इनका सुख आपस में बांटें, ये भी आखिर हम जैसे हैं। हमने माना जंग कड़ी है, सर फूटेंगे खून बहेगा, खून में गम भी बह जाएंगे, हम ना रहें गम भी ना रहेगा। कैसी लगी ये सोच? शाद होने का तसव्वुर मुल्क की बाहाली से भी किया गया है। जोश मलसियानी की एक नज्म अब आपके लिए पढ़ने वाली हूँ। जोश के बारे में पहले जरा आप सुन लीजिए। ये मिर्जा गालिब के ऊपर लिखी हुई अपने स्कॉलरली काम की वजह से काफी जाने जाते हैं, और सिर्फ इनको मिर्जा गालिब के ऊपर स्कॉलरली वर्क करने के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि उर्दू के ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट्स में से जो एक दाग दहलवी रह चुके हैं, उनके भी डिसाइपल थे। दाग के गुजर जाने के बाद दूसरे किसी पोएट से इन्होंने इस्लाह ली ही नहीं, उनको जरूरी ही नहीं लगा जोश मलसियानी को। एंड यू नो व्हाट, जोश मलसियानी का बर्थ नेम जोश मलसियानी नहीं है, उनका नाम है लभुराम। मुझे भी नहीं पता था, इस एपिसोड के लिए जब रिसर्च कर रही थी ना तभी पता चला। खैर, जोश मलसियानी शहीदों को याद करते हुए शाद और आबाद मुल्क का तसव्वुर करते हैं। इस नज्म का नाम है शहीद वतन। देखिए इन जीने वालों का निशान जिंदगी, देखिए इन मरने वालों का जहान जिंदगी, देखिए इन पस्तियों में आसमान जिंदगी, देखिए इन खाक के जर्रों की शान जिंदगी, बैठिए दम भर शहीदाने वतन की खाक पर। देखिए रूहे वफा क्या क्या उभरती है यहाँ, देखिए हुब्बे वतन दिल में उतरती है यहाँ, देखिए दिल की फजा कैसे निखरती है यहाँ, देखिए रहमत खुदा की तौफ करती है यहाँ, बैठिए दम भर शहीदाने वतन की खाक पर। इस जगह बेरंगियां भी आलमे तस्वीर हैं, इस जगह तारीकियां भी शमा की तनवीर हैं, इस जगह खामोशियां भी एक लबे तकरीर हैं, इस जगह रूपोशियां भी दिल की दामनगीर हैं, बैठिए दम भर शहीदाने वतन की खाक पर। उठ गए दुनिया से लेकिन एक दुनिया हो गए, बुलबुले पानी के थे टूटे तो दरिया हो गए, ये वो थे जर्रात जो उड़कर सुरैया हो गए, सुरैया यानी तारों का झुरमुट कॉन्स्टिलेशन, ये वो थे जर्रात जो उड़कर सुरैया हो गए, ये वो थे बीमार जो मरकर मसीहा हो गए, बैठिए दम भर शहीदाने वतन की खाक पर। दिल के उजड़े बाग को आबाद होते देखिए, रूह की अफसुर्दगी को शाद होते देखिए, रूह की जो अफसुर्दगी है, जो मेलंकली है, डिप्रेशन है, उसको आप जॉय में तब्दील होते देखिए, शाद होते देखिए। बंदगी को कैद से आजाद होते देखिए, पर शिकस्त सैद को सयाद होते देखिए। पर शिकस्त जिसके पर टूट गए हूँ, सैद कैदी को कहा जाता है, एक ऐसा परिंदा जिसका शिकार किया जाता है। बंदगी को कैद से आजाद होते देखिए, पर शिकस्ता सैद को सयाद होते देखिए, बैठिए दम भर शहीदाने वतन की खाक पर। आइए उस खाक से कस्बे फजीलत कीजिए, आइए कुर्बान उस पर दिल की दौलत कीजिए, हाँ जरा रुक जाइए इतनी न उजलत कीजिए, इस जियारत गाह आलम की जियारत कीजिए, बैठिए दम भर शहीदाने वतन की खाक पर। चलिए अब आपको एक पाकिस्तानी फेमिनिस्ट पोइट हैं हुमैरा राहत, उनकी एक नज़्म सुनाना चाहती हूँ। इसमें वो एक गहरा सवाल कर रही हैं कि हमारे नाशाद रहने में डर का कितना बड़ा हाथ होता है, और ये एक औरत के नुक्ते नजर से बात कर रही हैं। पर जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि क्या वाकई में बुजदिल लड़कियां ही हमेशा शाद रहती हैं, सदा आबाद रहती हैं। नज़्म सुनिए। ये डर जो साथ चलता है मेरी माँ की अमानत है, मैं जब छोटी सी बच्ची थी तो मेरी माँ ने इस डर को मेरे दिल के किसी सुनसान गोशे में बड़ी मुश्किल से डाला था। वो कहती थी कि मैं तन्हा कहीं बाहर ना जाऊं, क्यों ना जाऊं, बहस करती मैं, वहां पर भेड़िए फिरते हैं इंसानों की सूरत में। मैं उसकी बात सुनकर दिल में हंस पड़ती। वो कहती थी दुपट्टा सर पे लूं, अपनी निगाह नीचे रखूं और हर एक हुक्म पर सर को झुकाऊं, और मैं कहती सरासर बुजदिली है ये। वो कहती हाँ तो बुजदिल लड़कियां ही शाद रहती हैं, सदा आबाद रहती हैं। हमेशा शाद रहना था, सदा आबाद रहना था, सो मैंने अपनी माँ की इस अमानत को सदा आंचल से अपने बांध कर रखा। ये डर जो साथ चलता है मेरी माँ की अमानत है। पीढ़ी दर पीढ़ी जिस तरह कंडीशनिंग की जाती है हमारे समाज में औरतों की, जो डर और खौफ हमको मॉडेस्टी के नाम पर घोल के पिलाया जाता है बचपन से लेके अब तक, वो दरअसल बेड़ियां होती हैं पांव की। और कोई भी इंसान जब बेड़ियों के साथ चलने की कोशिश करता है तो वो उसके कदम कैसे उठ पाएंगे, वो शाद कैसे रह पाएगा जब दिल ही उसका आबाद नहीं हो पाया है। तो शाद और आबाद रहने का जो सीक्रेट है बस इतना है कि खौफ निकाल दीजिए दिल से, चाहे वो कितना ही पुख्ता क्यों ना हो, चाहे वो गुट्टी की तरह ही आपके अंदर क्यों ना डाला हो, खौफ निकाल के फेंक दीजिए। खौफ यानी डाउट, और डाउट में रहेंगे तो फिर शक की इंसान चैन से कभी नहीं रह पाता, ये भी याद रखिएगा, है ना। आपकी लाइफ सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, शादी हुई भी है आपकी कि नहीं हुई भी हो, वो भारीपन भी ना अपने दिल से हटा दीजिए। भले ही शादी का मतलब खुशी होता है, लेकिन शादी कैन नॉट बी द आंसर फॉर योर हैप्पीनेस। इंसानों जगहों चीजों में खुशी सिर्फ एक हद तक ही ढूंढ सकते हैं, क्योंकि शादमानी का जो सबसे बढ़िया सोर्स होता है वो हम खुद होते हैं। सो प्लीज थिंक अबाउट इट, ठीक है। ख्याल रखें अपना, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं आपसे। खुदा हाफिज़।